दोस्तों, स्मॉल बिजनेस सीक्रेट में श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कृषि क्षेत्र के व्यवसाय की। वैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में कृषि का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर बड़े आयाम में बड़े फलक पर वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके बेहतरीन से बेहतरीन फसल उगाने के प्रयत्न होते हैं, खेती की जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में वृद्धि और विकास के क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या विकल्प हैं, कैसे हो सकता है ये विकास? तो पहला विकल्प ये है कि अपनी पैदावार बढ़ाकर किसान अपनी आय, अपने व्यवसाय का विकास कर सकता है। और दूसरा है इस पैदावार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करके, यानी कि एक्सपोर्ट करके भी किसान अपने व्यवसाय की वृद्धि और विकास कर सकता है। लेकिन उन किसानों का क्या जो स्वतंत्र तौर पर चावल उगाते हैं या फिर खेती बाड़ी करते हैं और एक्सपोर्ट यानी कि जो निर्यात करने का लाइसेंस होता है, जो रजामंदी होती है, वो उन्हें नहीं मिलती। चलिए आज एक ऐसे ही किसान की सफल स्टोरी की बात करते हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य के स्वतंत्र चावल उगाने वाले किसान पीटर का कहना है कि ये विकल्प यानी कि एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का विकल्प सभी के पास उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत वर्तमान नियम अनुसार चावल निर्यात करने की परवानगी या लाइसेंस सिर्फ सनराइज को ही दी गई है। बहुत सारे किसान अपने चावल सनराइज को बेचते हैं। ये एक आसान सा हल है, ये एक आसान सी प्रक्रिया है जो उन लोगों ने डेवलप की है, उन लोगों ने विकसित की है। पीटर बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, कुछ और ही तरीके से अपने व्यवसाय का विकास कर रहे हैं। उनके बुलंद हौसलों के सामने जो निर्यात के नियम है वो मात्र नियम ही है।
Well, we've got roughly 600 acres of irrigation country and 250 acres of bush block just down the road.
पीटर रैंडल का परिवार व्यवसाय से ही खेतीबाड़ी के साथ जुड़ा है, खास करके चावल की खेती के साथ जुड़ा है। पिछले 27 सालों से वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से ही वो पूरी तरह से अपनी फसल का वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम हुए हैं।
The rice industry was highly regulated. It was a monopoly situation. Sunrise, through the Rice Marketing Board, had sole buying power, and all rice grown in New South Wales had to go to Sunrise. And so what we grew here as organic went through their system, and we didn't see the full value of that.
उनका कहना है कि वर्ष 2006 में निर्यात के यानी कि एक्सपोर्ट के नियमों में कुछ नरमी आई, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा। वर्ष 2011 में अकाल पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन इस समय के बाद अब पीटर अपनी चावल की फसल की प्रोसेसिंग भी खुद करते हैं, अपने खेत में करते हैं, और उन्होंने बड़ी ही बेहतरीन वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल की है ताकि खुद की लेबल के जो चावल है रैंडल ऑर्गेनिक राइस वो बेहतरीन तौर से ग्राहकों को पसंद आए।
It gives us what I call the Woolies margin. Before, as a bulk commodity, we were paid bulk prices, and as a value adder, we get the full retail price, and that's a big difference.
लेकिन अभी भी निर्यात के नियमों को लेकर पीटर थोड़े से चिंतित है। अगर कोई निर्यात कानूनों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो मौजूदा परिस्थिति में $250,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
We have almost weekly inquiries from somewhere in the planet, people looking for clean organic rice. And at the moment we cannot service that export market. Sunrise still has a monopoly on that. We're not a large tonnage grower by any means, but we could probably service small specialty markets.
पीटर का मानना है कि उनके हौसले, उनकी महत्वाकांक्षाओं और जिस तरह से वो अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो लघुमति में है। चावल मार्केटिंग बोर्ड के रॉबिन चुप का कहना है कि ज्यादातर चावल के किसान प्रस्तुत प्रक्रिया यानी कि सनराइज को अपने चावल बेचने का समर्थन करते हैं और उसी में विश्वास भी रखते हैं।
The actual capacity is a small rice grower to access overseas markets, and the freight, the marketing costs are quite expensive. The license was issued to Sunrice, which was originally Rice Growers Limited, as a cooperative before it became a corporate structure, to give the growers the maximum opportunity to achieve a higher return.
न्यू साउथ वेल्स राज्य में निर्यात के कानूनों में बदलाव लाने की समीक्षा की जा रही है और संभावना है कि कुछ ही समय में कुछ बदलाव जरूर आएगा। पीटर आशावान है कि जो भी बदलाव आए वो कुछ पॉजिटिव हो।
It's just a bit frustrating because I can see it's holding back the organic rice industry.
पीटर बताते हैं उनके व्यवसाय की 40% आय बड़े उद्योगों होटलों यानी कि घरेलू होलसेल से होती है, 30% आय बाजार में बिक्री से, 20% रिटेल की बिक्री से और 10% आय ऑनलाइन बिक्री से होती है। उनके बड़े ग्राहकों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन जो मुख्य ग्राहक हैं उसमें है बोंडाई आइसबर्ग रेस्टोरेंट जो सिडनी स्थित है और मेलबर्न की विंडसर होटल। अपने व्यवसाय के विकास के साथ उन्होंने विदेश से वैज्ञानिक उपकरण भी बसाए हैं जो चावल की प्रोसेसिंग को काफी आसान बना देते हैं।
Before we had this machine, we used to visually check all the rice, so it was very tedious and time-consuming.
अंत में तो बस इतना ही कि पीटर के हौसले हमेशा बुलंद रहे और उन्हें मनचाही सफलता मिले।